हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति जो फटी आंखों से उस चेन की देख रही थी, अर्णव की बात सुनकर जैसे होश में लौटी और मिरर में अर्णव को देखते हुए हैरानगी से सवाल किया, ये क्या है और क्यों लाए आप ये मेरे लिए? इसे तुम अपना फेयरवेल गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कर लो। इसमें आपने ऐसा कोई डिवाइस तो नहीं लगाया जिससे मेरी लोकेशन आपको पता चलती रहे? धृति ने सशंकित स्वर में सवाल किया और शक भरी नजरों से उसे देखने लगी। अर्णव ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया। नहीं, कहा था ना मैंने कि अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ धोखा किया है, पर इस बार कुछ गलत नहीं करूंगा। वही होगा जो तुम चाहती हो। कुछ नहीं है उसमें, एक सिंपल सा पेंडेंट है और एक रिक्वेस्ट है तुमसे। और कुछ तो लेकर नहीं जाओगी, पर इसे अपने साथ लेकर जाना। हमारे रिश्ते की आखिरी निशानी के तौर पर इसे अपने पास रखना। रखोगी ना? सच में आप मेरे साथ कोई चाल नहीं चल रहे ना? धृति का शक अब भी दूर नहीं हुआ था, अब भी उसे डाउट था। कोई चाल नहीं चल रहा, फिर भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो किसी भी ज्वेलर से इसे चेक करवा लेना। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उसी वक्त फेंक देना, और अगर सब सही निकला तो उसे हमेशा अपने पास रखना। जिस विश्वास के साथ अर्णव ने ये बात कही, धृति ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करने को मजबूर हो गई। धृति अपनी उंगली से उस पेंडेंट को छूने लगी, तभी एक बार फिर अर्णव की सर्द आवाज उसके कानों से टकराई। धृति, एक तस्वीर ले लूं तुम्हारे साथ जिसमें हम दोनों साथ हों और तुम्हारे चेहरे पर खुशी झलके? धृति ने सर हिलाते हुए हामी भर दी। अर्णव ने अपना फोन निकाला और एक बाह धृति की कमर पर लपेटते हुए खुद से सटा लिया। उसकी करीबी और उसके जिस्म से उठती परफ्यूम्स की भीनी भीनी खुशबू धृति को बेचैन कर गई। अपने जज्बातों को दिल की गहराइयों में दफन करते हुए उसने किसी तरह लबों पर मुस्कान सजाई। दोनों की साथ में एक खूबसूरत सी तस्वीर लेने के बाद अर्णव ने फोन वापस अपने पॉकेट में डाला और अपने चेहरे को उसके बालों के घनेरे बादलों में छुपा लिया। धृति के जिस्म और खुले बालों से आती भीनी भीनी खुशबू उसकी सांसों को महका गई। धृति अपने कमर पर लिपटी उसकी बांह को हटाने की कोशिश करने लगी थी, पर पल पल उसकी पकड़ और सख्त होती जा रही थी। उसे अपनी बाहों में भरे खड़ा अर्णव उसकी करीबी में खोता जा रहा था। उसके दिलो दिमाग पर ये बात हावी हो रही थी कि बस कुछ ही घंटे बचे हैं उसके पास धृति के साथ बिताने के लिए। सीने में भावनाओं का सैलाब उठ रहा था। बेचैन दिल बस धृति को खुद में छुपा लेना चाहता था। मन में बस एक प्रबल इच्छा उठ रही थी कि वक्त आज यहीं ठहर जाए, धृति यूं ही उसकी बाहों में समाई सदा उसके पास रहे। अपने इन्हीं बेचैनी धरे ख्यालों में उलझा अर्णव अनजाने तौर पर धृति को खुद में समाने की कोशिश करने लगा था। उसके तपते लब धृति की गर्दन पर आकर ठहरे और उसकी बाहों में कैद धृति बिन पानी की मछली जैसे छटपटा उठी। मिस्टर सिंह, आप गलत कर रहे थे। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब नहीं आएंगे। उसकी बाहों के घेरे से छूटने को मचलती धृति ने जैसे अर्णव को कुछ याद दिलाया था। अपनी गर्दन पर नक्श करते उसके लब और ये करीबियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। कुछ गलत होने की आशंका से उसका मन दहल उठा था और वही भय उसके अल्फाजों में झलकने लगा था। धृति के गर्दन पर फिसलते अर्णव के लब ठिठक गए। उसके शब्दों ने उसे जैसे खींचकर हकीकत में ला खड़ा किया था। दिल बेचैन था, पर कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था वो जिसके बाद धृति से नजरें तक मिलाने के काबिल न रहे। किसी तरह उसने खुद को संभाला और धृति पर अपनी बाहों के घेरे को कसते हुए उसके कान में सरगोशी की। मुझे याद है और मैं अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम पर पति होने का अधिकार नहीं जताऊंगा और ना ही अपनी लिमिट्स क्रॉस करूंगा। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। कुछ देर यूं ही रहो, कुछ मत कहो। मुझे तुम्हारी खुशबू को अपनी रूह में बसा लेने दो। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी के एहसासों को अपने दिल की गहराइयों में बसाना चाहता हूँ। एक प्यार भरी मासूम इल्तिजा थी। धृति जो अब तक उसकी मोहब्बत को ठुकराती आई थी, उसकी ये इल्तिजा ना ठुकरा सकी। वो चाह कर भी अब आगे कुछ ना कह सकी। लबों से शब्द बाहर ही न निकले। आंखों में नमी उतर आई थी, पर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही सुखा लिया और यूं ही उसकी बाहों में समाई खामोश खड़ी रही। आधी रात बीत गई थी। अर्णव जो इससे पहली रात जागा था, जाने कैसे बीती रात उसे नींद आ गई थी। धृति के बालों में अपना चेहरा छुपाए उसे खुद से सटाए वो गहरी नींद में सो रहा था। नींद में भी धृति पर उसकी बाजुओं की पकड़ बेहद सख्त थी, जो उसके मन के डर को दर्शा रही थी कि कहीं उसकी पकड़ जरा सी ढीली होते ही धृति उससे दूर न चली जाए। शायद वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था। धृति भावहीन चेहरे के साथ सूनी निगाहों से किसी छोटे बच्चे जैसे खुद से लिपटकर सो रहे अर्नव को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वो सूनी आंखें सुर्ख रंग में रंगी थीं और उसकी नाजुक उंगलियां अर्नव के बालों में घूम रही थीं। कुछ देर वो यूं ही उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए उसके बदन से आती भीनी भीनी खुशबू को अपनी रूह में बसाती रही। फिर बड़े एहतियात के साथ उसने अपनी कमर पर लिपटी उसकी बाजुओं को हटाते हुए उसे खुद से दूर किया। गहरी नींद में सोला अर्नव नींद में कसमसाया, हाथ बढ़ाकर किसी को ढूंढ भी रहा था, पर फिर बालों में किसी के नर्म एहसास को महसूस करते हुए जल्दी ही नींद की आगोश में समा गया। धृति, जो पल भर को डर गई थी कि कहीं अर्नव जाग न जाए, उसे वापस सोते देखकर उसकी थमी सांसें बहाल हुईं। अर्नव के बालों में उंगलियां घुमाते हुए अर्नव के चेहरे पर निगाहें ठहरीं और फड़फड़ाते लबों से धीमी सी आवाज़ बाहर निकली। माफ़ कर दीजिएगा मुझे, आपको यूं सोता छोड़कर जा रही हूं, पर सामने से जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आपने कहा था कि जब भी जाऊं दिन के उजाले में सबके सामने जाऊं, पर मुझसे ये नहीं होगा। आपके परिवार वालों का सामना नहीं कर सकूंगी मैं, और ना ही उनके सवालों के कोई जवाब होंगे मेरे पास, इसलिए इस तरह आपसे, आपके घर और आपके परिवार से दूर जा रही हूँ। जानती हूँ, सुबह जब आप उठेंगे और मुझे यहाँ नहीं पाएंगे तो बहुत दुख होगा। ये सब आसान मेरे लिए भी नहीं है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। आपकी मोहब्बत पर विश्वास है मुझे। आपकी अच्छाइयों को देखने के बाद आपने पहले मेरे साथ जो भी किया उसके लिए आपको तो शायद आज नहीं तो कल माफ़ भी कर दूँ, पर खुद को कैसे माफ़ करूँ? कैसे आज़ादी दिलाऊँ खुद को इस गिल्ट से जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। दी ने जो किया उसके बाद मैं खुद को कभी आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझ पाऊंगी। मैं जब जब आपको फेस करूंगी खुद को आपका गुनाहगार पाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भाई की मौत की जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर मैं दी को अपने जगह उस कॉलेज नहीं जाने देती तो आपके भाई के साथ कभी वो सब नहीं होता। आपको अपनी शराफत छोड़कर अपने जमीर को मारकर कभी वो सब नहीं करना पड़ता। मैं दोषी हूँ आपके और आपके पूरे खानदान की। आप लोग भी ये बात कभी नहीं भूल सकेंगे कि मेरी सगी बहन और मेरी अनजाने में की गलती के कारण आप लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्य को खोया है। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे आपसे दूर जाना ही होगा। यही आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। पर ये मत सोचिएगा कि आपकी मोहब्बत को ठुकरा कर आपको आपके गुनाहों की सज़ा दे रही हूँ, क्योंकि इतने चाहने वाले हमसफ़र को खोना मेरी बदकिस्मती है। भले ही आज मैं आपको पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकी हूँ, जो आपने मेरे साथ किया उसे भुला नहीं सकी हूँ, पर ये उन गलाहों की सज़ा नहीं है।
आपसे बड़ी गुनाहगार मैं हूँ और आपसे, इस परिवार से दूर जाकर सज़ा आपको नहीं, खुद को दे रही हूँ मैं, क्योंकि इन सब की शुरुआत मुझी से हुई है। शायद इस सज़ा को भुगतने के बाद मेरा गिल्ट कुछ कम हो और आप भी मुझे भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमारा कोई मेल नहीं। मेरी किस्मत में ये खुशियाँ और आपका साथ नहीं है। हमें जुदा होना ही होगा, यही नियति है हमारी। बोलते हुए धृति की आंखें छलछला गईं, गला रुंध गया। उसने किसी तरह खुद को बिखरने से बचाया, खुद को कमज़ोर पड़ने से रोका। अपने आंसुओं को बड़ी ही बेरहमी से अपनी हथेली से पोंछने के बाद उसने अपने लरचते लबों को उसके माथे पर रख दिया। झुकी पलकों के नीचे से फिसलते हुए आंसू की एक बूंद अर्नव की बंद पलकों पर आकर ठहर गई। धृति बिजली की तेज़ी से उससे अलग हुई और सीधे बाथरूम में घुस गई। काफ़ी देर तक वॉश बेसिन के सामने खड़ी अपने मुंह को अपनी हथेलियों से बंद किए सिसकती रही, फिर खुद को संभाला, मुंह धोकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार थी। उसने ड्रॉवर से नोटपैड निकाला और कुछ लिखने लगी। एक नज़र सोते हुए अर्नव पर डाली, फिर उस पेपर को कुशन के नीचे आधा दबाकर रख दिया। अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर उस पेपर के बगल में रखते हुए उसकी पलकें भीग गईं। इन महीनों में ये मंगलसूत्र उसके वजूद का अहम हिस्सा बन गया था, जिसे खुद से दूर करते हुए उसका कलेजा कांप उठा था और दिल खून के आंसू रोया था। उसकी भीगी पलकें अर्णव की ओर उठीं, आंसू से आंसू की एक बूंद फिसलकर फर्श पर बिखर गई और धृति अपना लगेज लेकर सीधे कमरे से बाहर निकल गई। घर से बाहर जाते हुए उसने पलटकर उस महल जैसे घर को देखा जहां उसने कई महीने बिताए थे। उसकी कई अच्छी बुरी यादें जुड़ी थीं इस घर से, जिसे अपने दिल में बसाए वो आगे बढ़ गई थी। टू बी कंटिन्यूड।